नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहे इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच लोकसभा में आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। उन्होंने कहा कि यह ऐप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है।
संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है।
नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23,00,000 से अधिक शिकायतों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए यह प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू है। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को पारित कराने के लिए पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन करना है। इसमें भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक के अंतर्गत कच्चे तंबाकू से बने उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज लगभग 64% लोग कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इससे भारत दुनिया में लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर बल दिया।
हमें लेबर को राइट भी देना है, हमें उसका कल्याण भी करना है और इसलिए हमने कई ऐसे कदम उठाए। सिर्फ कानूनों का मर्जर ही नहीं बल्कि श्रम शक्ति के सम्मान का मिशन के रूप में हमने रिफॉर्म को लेके आए।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी चिन्हित श्रेणियों में कार्य योजनाओं के उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने सभी एनसीआर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। इस अभियान में 2 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए जबकि 1 अन्य जवान घायल हुआ है। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। सरकार ने उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि इसराइल ने भारतीय सेना के साथ सैन्य अभ्यास की योजना रद्द कर दी है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह वीडियो फर्जी है और पाकिस्तानी प्रचार करने वालों के अकाउंट से बनाया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुगम्यता और समान अवसर सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 22 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।